ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तस्य त्वं तमसंधस्य दुष्पारस्याद्य पारगम् सच्चक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात्। अथ मे ययाद्यो भगवान् पुंसाम् ईश्वरो वै भवान् किल। लोकस्य तमसान्धस्य चक्षुः सूर्यैवोदितः। अथ मे देवसम्मोहम् अपाक्रष्टुम् त्वमर्हसि। यो वग्रहो अहम् ममेति इत्येतस्मिन् योजितस्त्वया। तं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरोः कुठारम्। जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। माता देहूति ने भगवान कपिल देव से कहा, निर्वीणा थक गई हूं, उब गई हूं, नितराम पूर्णता, भूमान हे अपरिसीम प्रभु, असद इंद्रिय तर्षणात् दूषित इंद्रियों की विषय तृष्णा से, ये न जिस भोगाभिलाषा से इंद्रियों को भोग समर्पण करने से, संभाव्य माने न इंद्रियों की मांग पूरी करने से, प्रपन्ना गिर गई हूं, अंधम तमह घोर अज्ञान में, प्रभो ये ज्ञान दान में समर्थ। तो श्री कर्दम जी के संन्यास लेने के बाद एक दिन माता देहूति अपने पुत्र भगवान कपिल देव के पास आकर उनसे ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा प्रकट कर रही। सबसे पहले देवहूति यह कह रही है कि हे प्रभो, मैं इंद्रियों की विषय भोगाभिलाषा से बिल्कुल उब चुकी हूं, निर्वीणा। निर्वीणा का अर्थ है मैं श्रांत हो गई हूं, थक गई हूं, अब मैं इंद्रिय के सुख नहीं भोगना चाहती। कैसी इंद्रियां? असत इंद्रिय तर्षणात्। असत, असत के दो अर्थ हैं, एक है क्षणभंगुर असत, जो सदा नहीं रहेगा उसको असत कहते हैं, जो सदा रहता है उसको सत कहते हैं, और दूसरा असत का अर्थ होता है दूषित। विषय भोग करने से इंद्रियां दूषित हो जाती हैं। तो देहूति कह रही है कि हे भूमन, हे अपरिसीम प्रभो, हे सर्वव्यापक प्रभो, आपका रूप गुण लीला आदि सब अनंत है। मैं असत इंद्रियों के तर्स से, विषय भोग की अभिलाषा से निर्वीणा बिल्कुल उब गई हूं, थक गई हूं। अब इसके बाद मैं इंद्रिय भोग को नहीं भोगना चाहती। इंद्रिय भोग का अर्थ है पांच ज्ञान इंद्रियों के पांच विषय। पांच ज्ञान इंद्रियां हैं आंख, नाक, कान, रसना, टेस्ट लेते हैं, और फिर त्वग इंद्रिय। यह त्वग इंद्रिय शरीर के सब जगह व्याप्त है। पैर में भी सेंसेशन होता है, कान में भी वो त्वग इंद्रिय है। चमड़े से मढ़ा हुआ है ये शरीर, और उसमें भगवान ने स्पर्श की स्पर्श को जानने के लिए शक्ति दी है। सब जगह ये इंद्रिय है शरीर में व्याप्त। तो इंद्रियों के भोग का मतलब है पांचों ज्ञान इंद्रियों के पांच विषय। आंख का विषय है रूप, नासिका का विषय है गंध, श्रवणेन्द्रिय का विषय है शब्द, और रसनेन्द्रिय का विषय है स्वाद, और त्वग इंद्रिय का विषय है स्पर्श। तो इन पांचों विषयों को भोगते भोगते इनसे सुखी नहीं हो पाई देवहूति, जबकि सबसे उत्कृष्ट कोटि के भोग भोग रही थी। स्पर्श करना या देखना, सूंघना, खाना पीना सब। और यथार्थ बात यह है कि प्रत्येक जीव प्रत्येक शरीर में इंद्रिया प्राप्त करता है, और उसके जीवन के जो भी क्रियाकलाप होते हैं केवल इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगा रहता है, किसी योनि में जाए। फिर भी वो व्यक्ति तृप्त नहीं होता है और उसकी इंद्रियां तृप्त नहीं होती, कभी नहीं। शरीर बदल जाता है, वो इंद्रियां छीन ली जाती हैं, लेकिन वैसी ही इंद्रियां दूसरे शरीर में दी जाती हैं। जैसे कोई कुत्ता का शरीर प्राप्त करे तो वहां भी वो इंद्रिय मिलती है, और देवता का शरीर प्राप्त करे तो वहां भी इंद्रिय मिलती हैं। और इंद्रियों की मांग को पूरा करने में ही जीव व्यस्त रहता है, कहां खाऊंगा, कहां स्पर्श करूंगा, कहां सुनने को मिलेगा, ये मिलेगा, इसी में व्यस्त रहता है, कभी सुखी नहीं हो सकता। और असत इंद्रिय तरसरात, असत का अर्थ है अनित्य। इस बद्ध दशा में जीव को जो इंद्रिय मिली हैं शरीर के भीतर, तो ये असत हैं, सब समय नहीं रहेंगी इंद्रियां। इस शरीर के बीतने के पहले ही इंद्रियां काम करना छोड़ देती, और शरीर जब जाता है तब तो ये असत इंद्रिय चली जाती, इनकी वृत्ति फिर दूसरे इंद्रियों में प्रकट होती। असत मनुष्य को यह समझना चाहिए कि क्या हमारे साथ जाएगा और क्या वास्तव में सच्चा भोग है। जब से जन्म हुआ है तब से ही नहीं, बहुत बहुत जन्मों में हम लोग विषयों को ही भोगते आ रहे हैं, वही खाना पीना, स्त्री संग आदि, ये सब यही विषय भोग करते आ रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि इंद्रियां कह दे अब कि अब मैं तृप्त हूं, अब मुझे भोग नहीं चाहिए। ये देखा गया है, सुना गया है कि कोई व्यक्ति अति वृद्ध हो जाता है और इसकी इंद्रियां नाकामयाब हो जाती हैं, तो वह अब कायाकल्प करवाना चाहता है, कोई औषधि लेना चाहता है या योगासन करता है, जैसे तैसे कि मैं फिर से तो स्वस्थ हो जाऊं, जुवक बन जाऊं। किस लिए? वही भोग भोगने के लिए जो पहले भोग रहा था, उसकी उसको कभी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि वास्तव में ये जो इंद्रियां हैं इनका जीव से कोई संबंध है ही नहीं। अतः इन इंद्रियों के भोगों से जीव को कोई सुख नहीं मिलता है, केवल एक अनुकूल वृत्ति का उदय होता है मन में, मन केवल झुटमुट के मान लेता है कि मुझे यह मिला, मैं बहुत अच्छा खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं। जीव की ये इंद्रियां असत हैं, टेम्पररी हैं, क्षणिक नाशवान हैं और दूसरी जड़ हैं। जीव है स्पिरिचुअल, अतः ये सांसारिक विषयों को लेकर के जीव तक पहुंचा ही नहीं सकती, कोई टच नहीं है जीव का। जीव तो भूखा है स्पिरिचुअल आनंद के लिए, भगवान के रूप रस गंध के लिए। जब तक भगवान का रूप, भगवान का गंध, भगवान का रस प्रसाद और भगवान का स्पर्श और उनके शब्द नहीं मिलेंगे, तब तक जीव कदापि सुखी नहीं हो सकता है। तो देवहूति को जो भी भोग मिले विमान पर, देवताओं के लोक में घूमने का, मेरु पर्वत की घाटियों में, सब जगह, किसी भी सुख के साथ जीव का कोई संबंध नहीं था। जैसे हम लोग सपना देखते हैं तो सपना में हम चाहे उत्कृष्ट भोग देखें या निकृष्ट देखें, जागृत जीवन से उसका कोई संबंध नहीं होता है। जैसे कोई व्यक्ति देख रहा है कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हो रहा हूं या बिजनेस किया हूं, मुझे बहुत पैसा मिल गया है, सपना में देख, तो जगने के बाद उसके नफा से क्या मतलब होगा? लगे सोचने के, अरे मुझे तो व्यापार करके इतना पैसा सपने में मिल गया था, वो अच्छा था, सपना ही चलता रहता, क्यों नींद खुल गई? कभी कभी लोग पछताने लगते हैं, कहते यार मैं सपना में बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया था, तुमने जगा दिया, बड़ा गलत किया। तू सपना देख रहा था, उसका जागृत जीवन से क्या टच है? अच्छा, यहां के सपना का थोड़ा थोड़ा संबंध होता भी है लेकिन जीव की जो स्थिति है, उसका जो स्वरूप है, उसके साथ इन इंद्रियों के भोगों से कोई टच नहीं, कोई स्पर्श नहीं। इसलिए चाहे इंद्रियों का जितना भी भोग भोग करे जीव, वो कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि वो सब असत है। असत इंद्रियों से असत विषय को जीव भोगता रहता है। वो सोचता है अब खाऊंगा, खूब बना बनाकर खाऊंगा तो मुझे तृप्ति हो जाएगी, मैं स्पर्श करूंगा तो मुझे तृप्ति हो जाएगी, मुझे सुख मिलेगा। इसी के लिए सब लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। कोई वायुयान से चल रहा है, कोई ट्रेन से चल रहा है, कोई कार से इधर उधर भाग रहा है। बॉम्बे वाले दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली वाले कलकत्ता भाग रहे हैं, कलकत्ता वाले इधर जाते हैं, फिर कोई अमेरिका जाता है। क्यों जा रहे हैं? वहां जा करके वहां का सुख भोग करके, चाहे वहां से पैसा लेकर के यहां का सुख भोग करके सुखी हो जाऊंगा, इसी के लिए सारा काम हो रहा है। सब सपना जैसा बेकार, उससे सुखी हो नहीं सकता। इंद्रियां जब दूषित हो जाती हैं तो वो दूषित पदार्थ को ही ग्रहण करेंगे जो आत्मा तक पहुंच ही नहीं सकता है। जीव की वास्तव में अपनी इंद्रिय हैं जो सत इंद्रिय हैं, लेकिन उन इंद्रियों का प्रकाशन कब होता है? जब जीव भगवान की नवधा भक्ति करता है, भगवान का नाम जप आदि करता है, तब उसकी जो ओरिजिनल इंद्रियां हैं धीरे धीरे अभिमुख हो जाती हैं, काम करने लगती हैं, तब वह भगवान का संग्राहक बनता है। जो सद इंद्रिय हैं, वास्तविक इंद्रिय, वे भगवान के रूप रस गंध शब्द को पकड़ने लगती है। भगवान का ये पांच विशेष, पांच विषय, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, ये सब जगह व्याप्त है, सब जगह व्याप्त है। व्यक्ति की योग्यता चाहिए कि भगवान के रूप को कैसे पकड़ सकता है या भगवान के शब्द को कैसे पकड़ सकता है। जैसे इस संसार में हम लोग देखते हैं कि यदि अच्छा टेलीविजन है, नया है और ठीक से कनेक्टेड है, तो वह दिल्ली में या बीबीसी लंदन में भी ट्रांसमिटेड रूप को पकड़ लेता है तुरंत। केवल स्विच ऑन किया जाता है और उचित केबल पर फिट करते हैं तो रूप पकड़ लेता है। यदि टेलीविजन का आविष्कार नहीं हुआ था जब तक, तब तक तो कोई कह सकता था कि ये रूप सर्वव्यापक नहीं है, इसको पकड़ा नहीं जा सकता। लेकिन घर घर में लोग अपने टेलीविजन में इसको पकड़ करके देख रहे हैं। ये यंत्र की विशेषता है, रूप तो पहले से ही व्याप्त था, या जो रूप इस समय है वो व्याप्त है सब जगह, दुनिया के हर एक कोने में है और कहीं भी उस रूप को पकड़ा जा सकता है। उसी तरह से जब भक्ति करके इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं तो भगवान के श्याम सुंदर रूप को भक्त कहीं भी पकड़ लेता है, सहज ट्रांसमिटेड होता है वो रूप, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, भगवान कभी निराकार नहीं है। लेकिन जिसके पास टीवी नहीं है और टीवी भी बिल्कुल ब्रोकन हो गया, टूट गया है, तो उसके लिए तो निराकार ही रहेगा। अब वो टीवी ऑन करे, कुछ भी करे, लेकिन एक भी रूप नहीं आएगा। और वास्तविक बात है कि टीवी थोड़ा ठीक भी है तो कनेक्टेड नहीं है, बिजली का कनेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो क्या देखेगा। अब उसके लिए निराकार के अलावा कोई समझ में आएगा ही नहीं। कभी कभी ऐसा हमने देखा है, कोई कोई टीवी निराकार तो नहीं लेकिन केवल लाइट झलमल करता है, कोई रूप नहीं आता, कहीं ना कोई कोई गड़बड़ी होती है। तो इसी तरह से यह अभी एक गड़बड़ी है। कुछ लोग कहते हैं हम लाइट देखते हैं। क्या लाइट देखते हो? ईश्वर का लाइट थोड़े है। कल्पना करते हैं मन में हम लाइट देख रहे हैं। लाइट मत देखो, बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर को देखो, ये देखने के लिए मन है। हम लाइट देखते हैं, हम ये देखते हैं, डिवाइन लाइट देखते हैं, डिवाइन लाइट देखते हैं। भगवान के अंगों से जो प्रकाश निकलता है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। लेकिन उसका अनुभव बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं, ऐसे ही वो डिवाइन लाइट नहीं देख लोगे। कहना आसान है। तो भगवान का रूप सर्वव्यापक है। अगर अपना हृदय ठीक है, हृदय का टेलीविजन ठीक है, स्क्रीन ठीक है और प्रेम भक्ति है, तो तुरंत रास करते हुए हृदय में भगवान दिखाई पड़ सकते हैं, या रथ चलाते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, कालिये के फण पर नाचते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। और यदि भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो बस कुछ भी नहीं दिखाई देगा। यह स्थिति है। मां देवहूति कहती है कि मैं असत इंद्रिय के तर्स से उब चुकी हूं। जब इंद्रियां संसार के भोगों में रची पची रहेंगी तो कैसे भगवान को समझ सकती है। कोई व्यक्ति किसी एक काम में इंगेज है, लगा हुआ है, तो दूसरे काम कैसे कर सकता है। तो अनादिकाल से बस यही खाना पीना सुनना देखना टच करना, इन्हीं सब संसारिक विषयों में जो माया के उपज है, इसी में जीव लगा हुआ है, तो भगवान के दिव्य रूप रस गंध का अनुभव कैसे कर सकता है। बताया गया है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा में चल रहा है तो प्राची दिशा में कैसे जाएगा, कैसे वो पूर्व दिशा में जाएगा। पैर चल रहा है पश्चिम दिशा में और वो सोचे कि अब मैं पूर्व पहुंच रहा हूं, पूर्व जा रहा हूं, पूर्व जा रहा हूं, लेकिन वो तो जा रहा है पश्चिम। मूर्खता बस उसे पता नहीं चलता है। तो इंद्रियों को शुद्ध करना चाहिए। इंद्रियां कैसे शुद्ध होती हैं? श्रील रूप गोस्वामी पाद ने कहा है सारे इंद्रियों की शुद्धि होती है जिह्वा से। तो दो कार्य करना चाहिए, एक तो भगवत प्रसाद खाना और दूसरा भगवान का नाम जपना। इन दोनों को करना, जिह्वा दो, जिह्वा पर सबसे पहले जब भगवान का नाम आता है और व्यक्ति प्रसाद खाता है तो सारी इंद्रियां धीरे धीरे शुद्ध हो जाती है, और शुद्ध होने पर भगवान के रूप रस गंध को पकड़ लेती है। यह भक्ति मार्ग। तो माता देवहूति के जीवन का अनुभव है, वो कह रही हैं कि मैं असत इंद्रियों के चक्कर में पड़ गई थी। बहुत भोग भोगी प्रभु, बहुत भोग भोगी पांचों इंद्रियों के, लेकिन कोई तृप्ति नहीं हुई। और अब मैं पूरा पूरा निर्वीणा हूं, पूरा पूरा उब चुकी हूं, थक चुकी हूं। विमान वहीं पर है, सारी सुख सुविधा वहीं पर है, लेकिन माता देवहूति कहती है मैं थक चुकी हूं, ये नहीं करना चाहते। इस तरह का अनुभव जब किसी व्यक्ति में होता है तब वह आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होता है। और यदि संसार ही अच्छा लग रहा है, संसारिक विषय भोग ही अच्छा लग रहा है, तो क्या भक्ति के पथ पर बढ़ेगा, क्या अध्यात्म तरक्की करेगा। निर्वीणा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणात्, हे भूमन, हे प्रभो, मैं पूरा पूरा निर्वीण हूं। निर्वीण का अर्थ विरक्त, थक जाना, उब जाना। असद इंद्रिय तर्षणात् जेन संभाव्य माने न प्रपन्नांधम तमह प्रभो। यदि मान लीजिए भगवान कहें कि इंद्रियों की मांग को कुछ दिया गया, अगर वो तृप्त नहीं होती है तो और देना चाहिए, इंद्रियों को और देना चाहिए भोग, तो देहूती जी कहती हैं जेन संभाव्य माने न, संभाव्य माने न का अर्थ पूर्व माने न, यदि इंद्रियों को इंद्रियों का भोग दिया जाएगा तो उससे जीव की चेतना दूषित होती जाती है और इंद्रियों की मांग और बढ़ती जाती है, और बढ़ती जाती है, कभी तृप्त नहीं हो सकती, क्योंकि तृप्त करने वाला विषय ही नहीं मिल रहा है। असत इंद्रिय हैं और असत्य भोग भी मिल रहा है, टेम्पररी, क्षणिक। हम लोग देखते हैं इस संसार में जो रूप है, रस है, गंध है, तुरंत ही फीका हो जाता है। संसार का वर्णन कोई करता है न्यूज़पेपर में और किसी काव्य में कुछ में, तुरंत फीका हो जाता है। सवेरे का समाचार व्यक्ति शाम को नहीं पढ़ना चाहता, और सवेरे कितनी तत्परता से वो खरीदता है, खरीद करता है, हमको न्यूज़पेपर दीजिए, न्यूज़पेपर, बहुत तत्परता से खरीदता है, पढ़ने के बाद फेंक देता है। परंतु भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम जो दिव्य ग्रंथ हैं, इनको लोग हजारों हजार लाखों वर्ष से पढ़ रहे हैं और नित्य नूतन लगता है, नित्य नवीन लगता है, नित्य नवीन लगता है। इंद्रियों का सुधार सबसे प्रथम आवश्यक वस्तु है अध्यात्म जगत में। असद इंद्रिय तर्षणात् प्रपन्नांधम तमः प्रभो। अंधम तमः का अर्थ ऐसा तम बढ़ता है, ऐसा अज्ञान की अंधा बना देता है व्यक्ति को, न वो ईश्वर को समझ सकता है, न मृत्यु को देख सकता है, सदाचार आदि देखने का तो प्रश्न ही नहीं, वो इतना अंधा हो जाता है, इतना अंधा हो जाता है कि विषय भोग को ही वो समझता है यही सब कुछ है, एतावत इति निश्चिता, यही सब कुछ, यही सब कुछ। तो इसे रोग से बचना चाहिए। अध्यात्म में अपनी उत्कंठा और योग्यता बताने के लिए देहूती जी कह रहे हैं कि मैं उब चुकी हूं। पहला है ये विषय भोग का त्याग, उसके लिए जत्न नहीं करना, उसके लिए संकल्प नहीं करना, उसके लिए प्लान नहीं करना। क्या कोई सुख पाएगा? जो सुख एक कुत्ता पा रहा है उससे बेटर सुख मनुष्य नहीं पा सकता है। भले उसकी योजना बहुत व्यापक है, वाइड है, वो विविध तरीके से अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करना चाहता है, जैसे जिह्वा है, तो जिह्वा को सेटिस्फाई करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए बहुत बहुत प्रकार के पकवान बना रहा है, लेकिन उन पकवानों को खाने में जितना सुख मिलता है मनुष्य को, उससे ज्यादा सुख मिलता है सुअर को गंदा खाने में। तो वही सुख तो हुआ, सब मिलाकर इतना भारी परिश्रम करके कितना सुख प्राप्त किए, जितना एक सुअर प्राप्त किए, बल्कि वो ज्यादा पाता है। वो रात को सो जाता है मल मूत्र पर, गड्ढे में कोई चिंता नहीं होती है। मनुष्य को तो बहुत चिंता होती है, रात में भी नींद नहीं आती है, क्षण क्षण में निद्रा भंग हो जाती है, तो चिंता में पड़ता है कल ये करना है, वो करना है, इतना बिल आ गया है बिजली का, उसको देना है, इतना पैसा उधर देना है, बहुत चिंता में रहता है मनुष्य, वो खा भी नहीं सकता अच्छे से, इतना भारी परिश्रम करता है। और भी स्पर्श के जो सुख हैं वो अन्य जीवों को ज्यादा मिलता है मनुष्य से, जबकि मनुष्य अनेक किस्म के स्पर्श करता है कई प्रकार से, लेकिन फल कितना होता है, जितना किसी पशु को पक्षी को विषय भोग करके सुख मिलता है उससे कम ही मनुष्य को मिलता है। तो जब उससे कम ही मिला तो उस भोग के लिए क्यों इतना परिश्रम कर रहे हैं, ये पक्षी पशु आदि तो कोई परिश्रम नहीं करते हैं, कोई परिश्रम नहीं करते हैं, और भगवान सबको दे ही देते हैं। तो मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं है कि सुअर की तरह दिन भर बस विषय भोग में लगा रहे, भगवान के भजन में लगना चाहिए। पर जीवन में किसी भाग्यशाली व्यक्ति के मन में ज्ञान उदित होता है कि मेरा तो प्रयास व्यर्थ जा रहा है, जो कुछ भी काम कर रहा हूं, जो कुछ भी प्रयास कर रहा हूं, इसका कोई लाभ नहीं है, कुछ विषय भोग मिला भी तो उससे आत्मा को कोई लाभ नहीं, तो मैं उब चुकी हूं और अब मैं इंद्रियों को भोग नहीं देना चाहती। तस्य त्वं तमसंधस्य दुष्पारस्याद्य पारगम स चक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात्। ऐसा अंधकार, ऐसा तमह, यह दुष्पार है प्रभु, इसको पार पाना कठिन है। जैसे मान लीजिए घोर रात्रि का समय हो और वर्षा काल हो, आकाश में बादल भी छाए हैं, सूरज डूब चुका है, चंद्रमा नहीं है, मान लीजिए अमावस्या की रात है और कोई साधन नहीं है, ना अपने पास लाइट है, टॉर्च है, ना दिया सलाई है, ना किरासन का तेल है, ना लकड़ी है, कुछ आग नहीं है, और इस अंधकार के पार होना है किसी व्यक्ति को, कैसे पार पाएगा, कहीं कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है उसे, अपना हाथ तक नहीं दिखाई पड़ता है, कभी कभी ऐसा अंधकार होता है, और दुखमय अंधकार। यहां अंधकार का अर्थ अज्ञान, इग्नोरेंस। तो माता देहूति कह रही है कि मेरे अज्ञान का या इस संसार में अविद्या का पार पाना बहुत कठिन है। अंधकार को अंधकार तिमिर कहते हैं, एक शब्द तिमिर, और अंधकार उसको इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति को अंधा बना देते हैं, अंधकार जो अंधा कर दे उसको अंधकार कहते हैं। अंधकार क्या है, कोई वस्तु नहीं है, प्रकाश के अभाव को अंधकार कहा जाता है। प्रकाश नहीं है तो अंधकार रहता ही है, तो कहीं से आता नहीं है, वास्तव में यह जगत ही अंधकार से पूर्ण बनाया है भगवान ने। यहां पर सूरज की व्यवस्था, चंद्रमा की या बिजली की, ये आर्टिफिशियल है, यहां का स्वाभाविक है अंधकार जो अंधा बना देता है। तो निबिड़ तिमिर होता है तो किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता है, आंख होते हुए भी कुछ भी नहीं दिखाई दे सकते। आप तिलक करना चाहें तो बिना दर्पण के नहीं कर सकते, और वो भी दर्पण कब काम करता है, जब कोई लाइट होता है। कुछ लोग गुमान रख सकते हैं, अभिमान करेंगे कि हमारी आंख तो बहुत तेज है, देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश न हो तो कुछ भी नहीं देख। पर सारे अंधकार का विनाश करने में एक वस्तु सक्षम है, वो है सूरज। सूरज के उगने पर अंधकार नष्ट हो जाता है और कोटि कोटि जीवों को देखने की शक्ति मिल जाती है, मतलब उनकी आंखें काम करने लगती है सूरज के उगते ही। तो भगवान जब इस जगत में आते हैं तो उसकी उपमा देहूति दे रही है सूरज से। कृष्ण सूरज सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। और जो प्रचारक हैं वे लोग हो सकता है कि एक दीपक है, ललटेन है, लेकिन भगवान सूरज पूरे विश्व को लाइट देने में समर्थ होते, ज्ञान देते। सूरज उगता है तो उगने मात्र से सब जगह आलोक छा जाता है, सब जगह प्रसन्नता छा जाती है और सब लोग देखने लगते हैं, अपना काम धंधा करते हैं। जब भगवान इस जगत में आते हैं तब लोगों को अपने आप ज्ञान होता है। पहले तो शुरुआत में ये पता चल जाता है कि अरे भगवान इतना सुंदर है, भगवान प्रकट हुए हैं, दुनिया में सब जगह चर्चा होने लगती है। जब भगवान मथुरा में प्रकट हुए तो इसकी सूचना सारे ब्रह्मांड में फैल गई कि भगवान जन्म लिए, भगवान जन्म लिए। यदि भगवान छिप करके जन्म लिए, कारागृह में जन्म लिए और उसके बाद नंद बाबा के यहां गोकुल में चले गए, लेकिन सब जगह ही पता चल गया कि भगवान जन्म लिए। इसका प्रमाण है कि जब कृष्ण बलराम मथुरा लौटे तो मथुरा में कंस ने मल्ल युद्ध का आयोजन किया था, रंगशाला बनी थी, बहुत बड़े दंगल का आयोजन था, बहुत बड़ा स्टेडियम बनाया था और लोगों के बैठने की बहुत सुंदर व्यवस्था थी, कई मंडल के मंच बनाए गए थे। और वह किस लिए बनाया गया था, किस लिए वो यज्ञ किया जा रहा था, धनुष यज्ञ और मल्ल युद्ध, कृष्ण बलराम को मारने के लिए। ऐसे ऐसे यज्ञ दुनिया में होते हैं। भगवान को मारने के लिए यज्ञ हुआ था, तो रंगशाला पर ही कुबलया पीड़ हाथी को रखा गया था और महावत को सिखाया गया था कि दोनों लड़के जब ही प्रवेश करें तो तुम हाथी को ऐसे खड़ा करना तिरछा कि वे निकल न सके इधर, और उनको पकड़ करके हाथी के द्वारा चिरवा देना या दबा देना, मर जाएंगे। तो महावत बिल्कुल निश्चिंत था, ठीक है, कंस का आदेश था कृष्ण बलराम को मारने। जब कृष्ण बलराम आए तो और डट करके हाथी तिरछा खड़ा हो गया, तो बलराम जी तो चुप रहे। भगवान कृष्ण ने कहा, ए महावत सुनो, हाथी को दरवाजे से थोड़ा किनारे खड़ा करो, हम लोगों को जाना है रंगशाला में, और नहीं हटाया ना, भगवान ने उसको उत्तेजित किया, अगर नहीं हटाया ना तो हाथी के साथ जमराज के यहां भेज दूंगा, समझे। अब तो पहले से ही वो प्लान किया था इनको मारने का, और कृष्ण की बात से तिल मिला गया। मैं सोचा सचमुच के बहुत बदमाश लड़के, ठीक सोच रहा है, कम से इनको मार देना चाहिए। तो हाथी को बिल्कुल टाइट कर लिया और कृष्ण के सामने खड़ा कर दिया, और कृष्ण लगे अपना धोती जो पहने थे उसको कछनी काछने लगे, और पीताम्बर को लेकर के बांध लिए कमर में, और बार बार कहे, हटाते हो कि नहीं, हटाते हो कि नहीं, छोटा सा बच्चा 11 साल का, और इतने बड़े हाथी को चैलेंज कर रहे हैं, हाथी वाले को थोड़ा भय नहीं था भगवान को, भगवान को क्या भय होगा। क्या भय हो सकता। तो महावत ने कहा, नहीं हटाऊंगा, क्या करोगे। तो भगवान श्रीकृष्ण ऐसे डरते तो हाथी भी समझ गया कि ये हमको मारना चाहता है, तो हाथी आगे बढ़ा, कृष्ण को मारने के लिए चला। तब तक कृष्ण बहुत बारीकी से जा करके उसका पूछ पकड़ लिए, हाथी का पूछ पकड़ लिए, और हाथी अपना सूंड अगर इधर बढ़ाता था तो पूछ को इधर कर लेते थे, और इधर बढ़ाता था तो इधर कर लेते थे, इस तरह घुमाते घुमाते हाथी को बेदम कर दिए। हाथी इतने बड़े शरीर में अगर घूमे इधर से उधर तो बहुत जल्दी थक जाता है, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला कुबलया पीड़ थक गया। इसके बाद वो पकड़ना चाहता था, तब तक भगवान उसके पेट के अंदर हो गए, मतलब चारों पैरों के बीच में खड़ा हो गया। बड़ा हाथी था तो भगवान आराम से खड़े हो गए, वो हाथी को कम दिखाई पड़ता है, उसके साइज के अनुसार उसकी आंखें नहीं होती हैं। शरीर के अनुसार देखा जाए तो उसको इतना बड़ा बड़ा आंख होना चाहिए, लेकिन छोटी छोटी आंख भगवान ने दिया। कुछ लोग कहते हैं कि बड़ी आंख दे देंगे तो हाथी को बहुत अभिमान हो जाएगा कि मैं इतना बड़ा हूं, तो पता नहीं क्यों छोटी छोटी आंख दिए तो वो खोजने लगा, कहीं नहीं मिले कृष्ण, तो सूंड से फिर सूंघने लगा, ऐसे भीतर करता था अपने पैरों के बीच में, भगवान कोने में हट जाते थे, फिर खोजता था फिर कोने में हट जाते थे, ऐसे हट जाते, एकाएक फिर निकल करके बाहर हुए। निकल करके बाहर हुए तो हाथी जोर से अपने दांतों से मारा, उनको खदेड़ा, कृष्ण भागने का नाटक किए, और भागने में भी फिर थक करके गिरने का नाटक किए। तो हाथी ने देखा कि लड़का गिर गया है, थक गया है, और ऐसे भी कहते थे बाप रे बाप, मार देगा हाथी, जिससे कि हाथी का उत्साह बढ़े। तो भगवान जब गिर गए भूमि पर तो उसने अपने दोनों दांतों से मारा कृष्ण के ऊपर, लेकिन ज्यों कृष्ण के पास उसके दांत गए तें ही कृष्ण उठकर भाग गए, तो उसके दोनों दांत पक्का रोड पर ठास लगे, उसके बहुत पीड़ा हुई पीड़ा हो तिलमिला आ गया। इसके बाद फिर भगवान उसका पूछ पकड़ करके लगे घुमाने, घुमाते घुमाते पटक दिए, पूछ पकड़ करके घुमाते घुमाते पटक दिए उसको, पटक दिए तो बलराम जी भी साथ में आ गए, दोनों भाई दोनों दांत उखाड़ लिए हाथी का, और उसी से पीटने लगे हाथी को, और महावत पर भी भगवान ने ऐसे चला दिया, वो हाथी पर से मर कर गिर पड़ा, वो भी मर गया। इसके बाद दोनों भाई रंगशाला में प्रवेश किए, कोई हथियार लेकर नहीं आए थे, ब्रज में हथियार था ही नहीं, तो बांसुरी बजाते थे, हल चलाते थे। बलराम जी कृषि के इंचार्ज थे और श्री कृष्ण गोपालन के इंचार्ज थे, बलराम जी हलधर हैं। तो दोनों भाई जब फिर भीतर घुसे तो वहां पर देखने वाले नौ तरह से देख रहे थे, किसी किसी को कृष्ण बहुत प्रिय लग रहे थे, किसी किसी को बड़े बड़े पहलवान पर्वत की तरह दिख रहे थे, किसी को स्वजन की तरह दिख रहे थे, स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव की तरह दिखाई पड़ते जो माधुर्य भाव वाली थी, इस तरह बहुत तरह से देख। तो मैं एक बात कहने जा रहा था, जब ही दोनों भाई प्रवेश किए और उनको बैठाया गया एक मंच पर, तो मथुरा के लोग आपस में बात करने लगे, खुलम खुला बात कर रहे हैं, स्त्रियां आपस में बात करती हैं, पुरुष आपस में बात करते हैं, स्त्रियां खुलकर कहती हैं, सखी जानती हो ये कौन है, ये कौन है जानती हो, ये साक्षात भगवान विष्णु है, ये साक्षात भगवान है, और इनका जन्म हमारे ही गांव में ही मथुरा में ही हुआ था, इनके पिताजी कंस के डर से चुरा करके ले गए स्त्रियां आपस में बात करती, पुरुष बात करते हैं। तो जब दंगल चालू हुआ पहलवानों के साथ, तो कहां बड़ा बड़ा शरीर वाले पहलवान और कहां छोटे छोटे शरीर वाले फूल से भी अधिक सुकुमार कृष्ण बलराम, जब दंगल चालू हुआ तो स्त्रियां बहुत रोने लगी, कहने की ओहो कितना अन्याय हो रहा है इस सभा में, इतने कर्कश पहलवानों के साथ इन सुकुमार बच्चों को लड़ाया जा रहा है। उस समय कुछ स्त्रियां सांत्वना देती हैं अन्य स्त्रियों को, तुम चिंता मत करो, तुम नहीं जानती हो ये कौन है, ये साक्षात भगवान है और इन लोगों को मारेंगे। तो ब्रज में हुई सारी लीलाएं बोल दी, ये कालिये का दमन किए, इंद्र वर्षा कर रहे थे तो सात दिन पर्वत उठाए, ये साक्षात भगवान है। बताइए मथुरा में एक एक व्यक्ति को पता हो गया था कि ये भगवान है, और मथुरा छोड़ दीजिए सारे ब्रह्मांड में पता हो गया था कि ये भगवान है। इतना भगवान सुंदर होते हैं, इतना तेजस्वी कि ये खबर फैल ही जाती है। मथुरा में जब वो प्रवेश कर रहे थे तो धोबी का वध किए, बहुत अटपटांग बोला था, कंस का कपड़ा ले जा रहा था आयरन करके सब राजा के परिवार में। तो भगवान गांव से आए थे, सिटी में रहे नहीं थे, तो उन्होंने सोचा कि सिटी के अनुसार नगर के अनुसार कुछ हमारा भी जिट जैट होना चाहिए, हमारा भी कपड़ा होना चाहिए। तो बड़े दीन भाव से भगवान ने कहा उस रंगरेज से जो रंगता था कपड़ा धोता, आप हमको कुछ कपड़ा दे सकते हैं जो हम इस शहर में पहन सकें। इतना सुनते ही वो कहां से आए हो, ये पता है किसका कपड़ा है? राजा का कपड़ा है। अगर सुन लेगा कि इस कपड़े को मांगे हो तो कंस अभी मंगा करके मरवा देगा तुमको, खबरदार कभी ऐसा मांगना मत। बहुत गाली देने लगा, गंवार कहीं के आए हो, गाय चराते हो और चले हो राजा का कपड़ा पहनने। इतना कहा तब तक भगवान कृष्ण अपने ऐसे अंगुली से उसके गर्दन पर मारे और गर्दन कटकर गिर गए। तो बाकी और जो उसके साथी थे, कपड़े का बंडल लिए थे, सब छोड़ छाड़ करके भाग गए, जान बचाने के लिए सब भाग गए। जब सरदार ही मारा गया तो अब सेवक लोग क्या करेंगे, भाग गए। कोई छुरी नहीं, कोई डंडा नहीं, केवल अंगुली से मार दिए, मस्तक कट गए। बताइए न्यूज़पेपर में कितने हेडलाइन में छपा होगा कि नहीं, इस तरह का चमत्कार। इसके बाद सुदामा माली के यहां गए, उसने बहुत स्वागत किया और तब मथुरा के राजपथ पर चल रहे थे तो एक स्त्री आ रही थी, हाथ में अंगराग ली थी, कई बर्तन ली थी और वो कंस की दासी थी। उसका पीसा हुआ अंगराग कंस को बहुत अच्छा लगता था, बहुत एक्सपर्ट थी, बहुत सुंदरी थी, मुख बहुत सुंदर था लेकिन पीठ पर कुब्ज था, कुबर था, वो झुक करके चलती थी। तो लेकर के आ रही थी, भगवान इधर से जा रहे थे तो गोपों के सामने, अपने साथियों के सामने ही उस स्त्री के पास हो करके भगवान कहे, सबसे पहले संबोधन किए, हे सुंदरी क्या तुम हमें ये अंगराग दे सकती हो, चंदन केसर आदि का लेप था, तो ये दे सकती हो क्या? अगर तुम दोगी मुझे तो तुम्हारा बहुत जल्दी मैं बहुत बड़ा कल्याण करूंगा। भगवान के पास कोई पैसा वैसा नहीं था, वो कहें कि इतना पैसा ले लो और ये पेस्ट दे दो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन भगवान इतना आकर्षक हैं, वो मांग दिए, यही बहुत बड़ी कृपा हुई। उसका त्याग देखिए उस स्त्री का, वो कहती है, उसने भी संबोधन किया, हे सुंदर मैं कंस की दासी हूं, कंस के लिए ये अंगराग ले जा रही हूं पीसकर, क्योंकि भोजराज कंस मेरा अंगराग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इस अंगराग का अधिकारी वास्तव में आप हैं, मैं आपको अभी दे रही हूं। इसको कोई भय नहीं हुआ, कंस मारेगा, जान से मार देगा, उसको कोई भय नहीं हुआ। और उसने कहा कि मैं अपने हाथ से आपको अंगराग लगाऊंगी। तो भगवान श्री कृष्ण पर उसने पीला अंगराग लगाया, श्रेष्ठ अंगों पर, कमर से ऊंचे अंगों पर लगा, तो भगवान कृष्ण बलराम जी जैसा लगने लगे, और बलराम जी को नीला अंगराग लगाया तो कृष्ण जैसे लगने लगे और दोनों को लगाया। तो भगवान ने सोचा कि हमको इसने बहुत बड़ी चीज दिया, अंगराग दिया लगाने के लिए, कपड़ा तो सिला लिए थे अपने नाप का, जो कपड़ा मिला था तो एक दर्जी के पास जाकर सिला लिए, बिल्कुल भी फिटिंग अपने लायक, तो अंगराग लिए। इस दान का तुरंत फल दिखाने के लिए भगवान ने कुब्जा को, उस लड़की को खड़ा किया, ऐसे सामने खड़ा किया, खड़ा करके उसके दोनों पैर को अपने दोनों पैर के अंगूठे से दबाए और एक हाथ पीछे किए और एक हाथ से उसके चिबुक को ऐसे पकड़ करके और सबके सामने टाइट किए, कड़ा किए, ऐसा खींचते ही कुबड़ खत्म हो गया और वो लक्ष्मी जी के समान सुंदरी हो गई तुरंत। बताइए अगर इस जमाने में ऐसा कोई कर दे तो दुनिया का कौन न्यूज़पेपर बाकी रहेगा इस समाचार को छापने, कोई बाकी रहेगा? टीवी पर कई दिन यही दिखाते रहेंगे, भूल जाएंगे सारी दुनिया को अगर कोई मनुष्य ऐसा कर दे। लेकिन भगवान तो रास्ते पर चलते चलते कर दिए, कोई और बहुत मेडिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं लिए थे, ऐसा करें ऐसा करें ये करें वो करें, इसको खींच करके अगर ठीकना है तो लंबा कर दें। कई लोग कहते हैं हम आपके ऊंचाई को बढ़ा देंगे, हम आपके बढ़े हुए शरीर को घटा देंगे, या घटे हुए शरीर को भोंदू बना देंगे। कुछ लोग ऐसे प्रतिज्ञा करते हैं, कई ऐसे दुकानें चलती, हम ये कर देंगे हम ये कर देंगे, क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन भगवान रास्ता चलते हुए और कुछ भी हाथ में नहीं लिए थे और ऐसे केवल खींच करके अपनी कला से उसको परम सुंदरी बना दी। यह घटना क्या पूरे ब्रह्मांड में नहीं फैली होगी? सब जगह फैली होगी। अद्भुत व्यक्ति है कृष्ण नामक लड़का, अद्भुत काम करता। तो भगवान का इस तरह से पराक्रम, उनकी लीलाएं सर्वत्र गाई जाती थी उनके समय में ही, बचपन से ही। और 7 दिन जो लड़का पहाड़ उठा करके खड़ा होगा वो क्यों नहीं सारी दुनिया में लोग जान जाएंगे। आज कोई है दुनिया के सभी लोग मिलकर भी क्या गोवर्धन टांग लेंगे? सब लोगों को इनवाइट किया जाए, जितने भी पहलवान हैं बलवान हैं वो सब आवे और एक भारी पर्वत को उठा ले। कोई उठाएगा? मर जाएंगे उठाने में। लेकिन जो बच्चा जो लड़का 7 दिन उठाए रहा बिना खाए पिए बिना सोए, उसका जस कितना फैला होगा। ब्रज में कई किलोमीटर में आग लगी थी, कई किलोमीटर में, और सारे ग्वाल और गौवे अब जलने की हालत में थे, भस्म होने की हालत में थे। आकर प्रार्थना की कृष्ण रक्षा करो हमेशा रक्षा किए हो, रक्षा करो, ये आग जला रही है, भभक रही है चारों तरफ से। उस उमड़ती हुई लपटों को देख करके गोप अब तो सोच लिए कि इसमें जल ही जाना, लेकिन भगवान ने कहा डरो मत। और उन्हें के देखते देखते उन्होंने अपना मुख खोला और सारी आग उसके मुंह में समा गई, सब आग पी गए कृष्ण। और फिर भी उनका न जीभ जला न ओठ जला और न तो उन्होंने आय आय करके थूक दिया। थोड़ा सा गर्म खिचड़ी खाने पर हालत बिगड़ जाती है ना। कई बार आए बहुत गर्म है बहुत गर्म है गर्म, पंखा झलते। जब जरा डायरेक्ट अंगार पी करके देखिए ना, जो अपने को भगवान कहता है उसके मुंह में 2-4 अंगार ठूसना चाहिए कि वो है कि नहीं भगवान, तो टेस्ट करना चाहिए। तब तो पूरी लीला ही उसी दिन समाप्त हो जाए, मर जाएगा, भगवान बनता है। भगवान का जस सब जगह फैलता है। इस जगत में जब वो जन्म लेते हैं आते हैं तो अपने आप लोगों को ज्ञान होने लगता है उनकी लीलाएं देख करके सुन करके। सब जगह लीलाएं फैलती हैं और वैसे सबको ज्ञान होने लगता है, अज्ञान दूर होता है ईश्वर के विषय में, जैसे सूर्य के उगने पर अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है अपने आप। और जब कभी भगवान श्री कृष्ण किसी असेंबली में बैठते हैं, सभा में बैठते हैं, तब तो वहां पर पूरे ब्रह्मांड से लोग जुटते थे। जैसे महाराज युधिष्ठिर के राज सूर्य यज्ञ में देवता आए थे, ब्रह्मर्षि आए थे, नाग लोक से लोग आए थे, गंधर्व लोक से, सब ओर से आए थे। क्यों आए थे? श्री कृष्ण को देखने के लिए, भगवान को देखने के लिए आए थे। और आज इस समय अगर मान लीजिए संसार में कोई सुंदर है कोई सुंदरी है तो उसको देखने के लिए एक भी देवता नहीं आते हैं। कोई आता है दूसरे जगह से? देवता नहीं आते हैं। यही सब लोफर गुंडे बदमाश जुटते हैं देखने के लिए और कोई देखना नहीं चाहता। लेकिन भगवान को देखने के लिए तो दुनिया के सारे संत महात्मा राजर्षि ब्रह्मर्षि देवता सब आते। यह वर्णन भीष्म पितामह मरते समय शरीर छोड़ते समय अपनी स्तुति में कह रहे हैं। और जो भी आया और भगवान को देखा कृष्ण को तो सब लोग यही कह रहे थे, यही कह रहे थे कि ब्रह्मा के पास सुंदर मनुष्य बनाने का जितना उपकरण था उन्होंने कृष्ण में खर्च कर दिया, अब ब्रह्मा नहीं बना सकते हैं ऐसा सुंदर व्यक्ति। यद्यपि कृष्ण ब्रह्मा के बनाए हुए नहीं हैं, ब्रह्मा कृष्ण के बनाए हुए हैं, लेकिन लोक रीति से लोग यही कहते थे कि विधाता के पास एक सुंदर मनुष्य रचने की जितनी शक्ति है सारी शक्ति को विधाता ने कृष्ण में खत्म कर दिया। मतलब ऐसा सुंदर मनुष्य न तो कभी हुआ था न है न हो सकता है, सब लोग यही कह रहे थे। गोपियां तो इतना पसंद करती थी भगवान को देखने में कि उनके आंखों पर पलक जब गिरती थी तो वो बहुत बुरा लगता था। वो ब्रह्मा को गाली देती रहती थी हमेशा कि हम लोगों के आंख पर पलक क्यों बनाया। जो लोग कृष्ण को नहीं देखते हैं अपने धाम में रहते हैं देवता लोग, तो उनके आंख पर पलक नहीं बनाया, और हम लोग कृष्ण का दर्शन कर रही हैं तो पलक बना दिया, इतना हम लोगों के साथ चतुरता कर रहा है। बहुत दुख होता था पलक गिरने पर। भगवान के ये सब गुण दशम स्कंध में भरे हुए हैं, कितना सुंदर है, कितना रसिक है, कितना लीला परायण कृपालु है, भगवान के सब लीलाएं हैं। तो यहां पर मां देवहूति कह रही है कि हे प्रभु, जैसे सूर्य उगता है और सारे विश्व को आलोक देता है, ऐसे ही आप प्रकट हुए हैं इस जगत में सबको आंख देने के लिए। प्रकाश के द्वारा ही आंख की क्षमता होती है देखने की, तो चक्षु का ये अर्थ है। तस्य त्वं तमसुंधस्य दुष्पारस्याद्य पारगम सचक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धम मे त्वदनुग्रहात्। और आप अपनी कृपा से प्रकट हुए हैं, त्वद अनुग्रहात्। भगवान कपिल देव को मां जशोदा मां देवहूति कह रही है कि आप सत चक्षु हैं, सत चक्षु परम समर्थ आंख है, आज हमको आंख मिली है। मतलब आप आंख के रूप में प्राप्त हुए हैं, दिव्य ज्ञान के रूप में प्राप्त हुए हैं। मैं चाहती थी इस अंधकार को पार करना, इस अज्ञान को पार करना, मैंने अपने पति से भी कोशिश किया, लेकिन पति देव ने सीधा कहा कि भगवान आएंगे तुमको ज्ञान देने के लिए। तो इस तरह से आप सब चक्षु हैं, मैं बहुत दिन से अंधी रही, बहुत दिन से अज्ञान में रही, इस अज्ञान से जो दुष्पार है इससे पारगम चक्षु, पार लगाने वाली आंख आप हैं। वास्तव में भगवत ज्ञान के बिना प्रत्येक जीव अंधा है, और गुरु इसीलिए स्वीकार किया जाता है कि गुरु आंख दे, शास्त्र ही असली आंख है। तो शास्त्र की व्याख्या करके समझा करके गुरु रियल आंख देता है, उस आंख से व्यक्ति भगवान को समझ जाता है। पारगम जो पार कर दे, पारम गमयति इति पारगम, जो पार पहुंचा दे इस अज्ञान के। उपनिषद में कहा गया है कि जब कोई शिष्य गुरु ग्रहण करता है तो गुरु के चरणों में प्रार्थना करता है, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे गुरुदेव, असतो मा सद्गमय, मुझे इस असत्य अनित्य जगत से सत्य जगत को ले चलिए, अर्थात वैकुंठ के बारे में बताइए, इस जड़ जगत में मैं बहुत दुखी हो गया हूं, असत से मुझे सत की ओर ले चलिए, केवल भगवान की भक्ति की ओर। तो यह जो अज्ञान है जीव का, यह दुष्पार है, इसका ओर छोर नहीं है। बहुत काल से, जब अनादि काल से जीव अज्ञान में पड़ा हुआ है, और दुष्पार इसलिए भी कहते हैं कि अपने आप इसका नाश नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए किसी भवन में अंधकार छाया हुआ है, तो उसमें लाइट की व्यवस्था न की जाए तो क्या अपने आप अंधकार कभी जाएगा? कोई ये कह सकता है सूरज उगेगा तो चला जाएगा, सूरज उगा तब गया ना, लेकिन ऐसे अपने आप कुछ न किया जाए तो अंधकार जाएगा नहीं। कोई भी जीव यदि उसको भगवान के रूप गुण लीला आदि को नहीं बताया जाएगा तो अपने आप वो भगवान को कभी नहीं जान पाएगा, अपने को भी नहीं जान सकता है, भगवान को क्या जानेगा। तो इस तरह से इसको दुष्पार कहा गया है, विवेक नष्ट कर देने वाला या ज्ञान। इस दशा में मैं पड़ी थी, मैं चाहती थी कि इस भव सागर के पार जाऊं, ज्ञान के पार जाऊं, तो आप अपनी कृपा से ही हमको मिले हुए हैं। मुझमें शक्ति नहीं थी कि मैं आपको पा जाऊं, लेकिन जैसे भगवान सूर्य स्वयं ही कृपा करके उदित होते हैं, उनको कोई बुलाने की शक्ति नहीं रखता है। यदि मान लीजिए सूर्य किसी दिन डूब करके और अड़ करके पाताल में ही रह जाए तो मनुष्य क्या करेंगे? क्या सूर्य को खींच करके लाएंगे? यदि मान लीजिए सूर्य न आना चाहे तो किसी की शक्ति नहीं है कि वो सूर्य को रस्सी में बांध करके और खींच करके उदित कर दे। पता ही नहीं लगेगा कि सूर्य कहाँ है, खींचने की तो बात अलग है। और सूर्य के पास जाएगा कौन? उनके निकट पहुंचने पर सब जलकर भस्म हो जाएंगे, कौन जा सकता है? लेकिन सूर्य स्वयं ही उदित होता है। इसी तरह से भगवान वास्तव में स्वयं प्रकट होते हैं, उनको कौन प्रकट कर सकता है? किसकी क्षमता है? वो प्रकृति से पार है, कौन उसको उनको पाएगा, कौन उनका अनुभव कर पाएगा? लेकिन प्रभु स्वयं ही कृपा करके प्राकृत जगत में आविर्भूत होते हैं, अपनी माया से, अपनी शक्ति से, और विश्व का कल्याण करते हैं। भगवान का इस जगत में आना सभी जीवों का हित करने के लिए होता है, सबका हित करने के लिए। यहां आकर के वो ज्ञान देते हैं और कुछ दुष्कर्मियों का दमन करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, साधुओं की रक्षा करते हैं, जो अपने धर्म में रहते हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और सब जगह घूम घूम करके अपने बारे में डायरेक्ट ज्ञान देते हैं, देखो मैं हूं। अन्यथा लोग कहते हैं कि भगवान निराकार हैं, और कुछ लोग ऐसा मत फैलाते हैं कि भगवान है ही नहीं, भगवान है ही नहीं। इसीलिए भगवान स्वयं कृपा करके आते हैं कि देखो देखो मैं हूं और कैसा हूं देखो। तो उस पर भी सामने भी कुछ लोग गाली देते हैं, हम तुमको भगवान नहीं मानते, सीधा कहते हम नहीं मानते। तो भगवान क्या करे, मानो या मत मानो, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े लोग तो मानते हैं, सब लोग मानते हैं। तो उस समय भी कुछ लोग थे, बहुत कम लोग थे, एकाध जो थे जो कृष्ण को चैलेंज कर रहे थे, और ज्यादातर लोग ऐसे थे जो विरुद्ध की बात कह रहा हूं, बहुत कम विरोधी थे कृष्ण के, और जो थे भी तो उनको भगवान मानते थे, कहते थे हाय भगवान भाई हम लोहा मानते हैं लेकिन हमको इसे प्रेम नहीं है, सीधी बात, क्योंकि हमारे दामाद को मारा है। जरासंध कहता हमारे दामाद को कंस को क्यों मारा, वो मानता था कृष्ण को कि भगवान है, उसके वचनों से सिद्ध होता है, मानता था भगवान है लेकिन हमको इसे प्रेम नहीं है, ये अपने मामा का वध किया। अब मन में बैठा लिया कि कृष्ण ने मामा का वध किया इसलिए ये बहुत बदमाश व्यक्ति है, लेकिन अपने दामाद के दोषों को, कंस के दोषों को जरा सन सपने में भी नहीं देखा। इसने तो मामा का वध कर दिया कृष्ण ने, और मामा अपने कितने भांजों को मारा था ये कभी नहीं देखता था, तो कभी नहीं देखता, वो जन्म लेते ही मार देता था। इस तरह के कुपमंडुक दुनिया में होते हैं, बस अपना मान लिया तो उसके दोषों को बिल्कुल नहीं देखना है, और दूसरे के दोष को सरसों बराबर है उसको हिमालय जैसा बना बना करके देखना, यही दुनिया। तो कंस की दृष्टि से कृष्ण ठीक व्यक्ति नहीं, जरासंध की दृष्टि से कृष्ण ठीक व्यक्ति नहीं। तो कंस क्यों इतना रंज हुआ, कंस ने कई असुर भेजा, बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर, कौन कौन, अरिष्टासुर सब, और वहां जाने पर कृष्ण ने सबको मार दिया, तो ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया? तुम मारने के लिए भेज रहे हो तो भगवान वहां जाने के बाद मार देते थे, तो जद गत्वा न निवर्तम थे, वृंदावन से कोई लौटता ही नहीं था। वही पर उनकी गति मुक्ति जो भी है हो जाती है। तो भगवान का विरोध करने वाले कुछ लोग उनके सामने भी रहते थे, लेकिन भगवान के ऐश्वर्य तेज माधुर्य को देख करके ये समाचार जब फैलता था तो 99% से भी ज्यादा लोग डिवोटी हो जाते थे, भगवान भक्त हो जाते थे, ऐसा प्रचार होता था। अब जैसे सूरज के उगने पर सबकी आंखें खुल जाती हैं, उस तरह से भगवान के यहां आने पर सबकी आंख खुल जाती है। और कभी वे प्रवचन कर रहे हो कहीं सभा में, तो उनके प्रवचन इतने सुंदर होते हैं, इतने सुंदर यथार्थ कि किसी को भी ज्ञान तुरंत हो जाता है। ये प्रभाव देखा गया भगवान का कई लीलाओं में। इसलिए माता देवहूति कह रही है कि मैं इस घोर अज्ञान में पड़ी हुई हूं, अंधकार में, डार्कनेस में, लेकिन अब सूरज की तरह उदित हुए हैं। आप हैं कौन, इस विषय में माता देवहूति कहती है, यो याद्यो भगवान पुंसान ईश्वरो वै भवान किला लोकस्य तमसांधस्य चक्षु सूर्य इवोदितः। अगर भगवान कपिल देव पूछे कि मां मैं कौन हूं, मुझको पहचानती हो, तो मां कहती है यो याद्यो भगवान पुंसान ईश्वरो वै भवान किला। हमने सुना है कि समस्त पुरुषों के ईश्वर आदि पुरुष जो भगवान हैं, सबके नियंता, सबको जन्म देने वाले, वही आप हैं, सवै भवान किल निश्चित। इसमें संदेह नहीं है कि आप स्वयं साक्षात भगवान हैं। कैसे जानती हो, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा है और आपका स्वरूप बता रहा है कि आप साक्षात भगवान। इतना क्लियर माता देवहूति बोल रही है, आप साक्षात भगवान हैं, ईश्वर है। लोकस्य तमसांधस्य, पूरे संसार में जितने लोग अज्ञान से अंधे बन गए हैं, उनके लिए सूर्य इव उदितः, उन्हें नेत्र देने के लिए आप सूर्य की तरह उदित हुए हैं, सूर्य की तरह उदित हुए। आजकल कहीं कहीं हम लोग सुनते हैं कि आंख का ऑपरेशन चलता है, कैंप लगता है, तो अभी कुछ देखने की शक्ति रहती है तभी कुछ ऑपरेशन किया जाता है। तो बिल्कुल दिखाई ना दे रहा हो, शुरू से ही कोई व्यक्ति अंधा हो, तो उसको आंख दे नहीं दे सकते ना, कोई ऐसी व्यवस्था है? शुरू से ही आंख नहीं है तो उसको आंख दिया गया है क्या किसी को? ऐसा शायद मैंने नहीं सुना है, आंख नहीं दे सकते। और आंख जिनको है दिखाई पड़ता है, लेकिन अंधकार में डूब जाए वे लोग, तो फिर भी आंख काम नहीं करती। भगवान जब आते हैं, भगवान सूर्य जब आते हैं, तो आंखों में देखने की शक्ति आ जाती है। तो एक ऐसे सूरज की कल्पना कीजिए कि आंख बिल्कुल नहीं है किसी को, और ऐसा सूरज उगे जो प्रकाश दे करके और आंख को खोल दे, जो आंख का साकेत है जिसमें दिखाई नहीं पड़ रहा था, उसके उगते ही दिखाई पड़ने लगे। ऐसे हैं भगवान, अज्ञान पटल का विनाश कर देते हैं। भगवान के विषय में, अपने स्वरूप के विषय में जो जीवों को अज्ञान होता है, वो भगवान के वक्तव्य से, प्रवचन से और भगवान को देख करके, सुन करके अज्ञान चला जाता है। पुण्य श्रवण कीर्तन, हम लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, केवल श्रवण और वर्णन से अंधकार नष्ट हो जाता है। और वही प्रभु आकर के यदि डायरेक्ट बोले और दर्शन दे, तो कैसे अंधकार रह सकते हैं, कैसे अज्ञान रह सकते हैं? उनका नाम लेने से अज्ञान नष्ट हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो माता देवहूति इस श्लोक से पहले कहती हैं कि हे प्रभु, आप अपनी कृपा से हमें नेत्र रूप में प्राप्त हुए हैं, मैं तो अज्ञानी हूं, कुछ नहीं समझ रही हूं, लेकिन हमको ज्ञान देने के लिए आप जन्म लिए हैं। इस तरह से भगवान के प्रति और गुरु के प्रति, वैष्णवों के प्रति अपने कृतज्ञता को प्रकट करना चाहिए। जैसे नैमिषारण्य के ऋषि लोग कहते हैं कि हम लोग इस दुस्तर कली समुद्र को पार करना चाहते थे, पर कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि भगवान ने डायरेक्ट आपको भेजा है हमारे पास, ऐसा ये कहते। कैसे है वो श्लोक शुरू में, कलिम सप्त हरम कर्णधार इवारणम, शुरू का शब्द कैसे है? वे लोग कहते हैं कि हम लोग इस नैमिषारण्य में जुटे हैं और हम लोग यही सोच रहे थे कि कलयुग के दोषों से हम कैसे मुक्त होंगे, समुद्र की तरह कैसे पार होंगे, कैसे पार होंगे। तुम्हें धत्रा, इसी पर एक कहावत याद आ जाती है, तुम न संदर्शितो धत्रा दुष्तरम निस्तीर्षता कलिम सत्व हरम पुंसम कर्णधार इवारणम। हम लोग कलयुग के दोषों से पार होना चाहते थे, अज्ञान से पार होना चाहते थे, लेकिन हमारे पास कोई उपाय नहीं था, पर भगवान ने आपको भेजा है, आपको भेजा। सूत जी को कहते हैं अब हमें विश्वास हो गया कि हम लोग पार हो जाएंगे, तो पार होने के लिए नौका चाहिए। नौका क्या है? भगवान की कथा, और कथा कहने वाला कर्णधार है, पतवार लेने वाला। भगवान के कथा के अलावा और कोई उपाय नहीं है भवसागर तैरने का। कथा सुन सुन करके भवसागर या अज्ञान समुद्र को पार किया जाता। तो ऋषि लोग बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, भगवान ने आपको भेजा है हमें पार करने के लिए। वही बात माता देवहूति कह रही कि आप स्वयं ही आए हैं कृपा करके मेरे पुत्र के रूप में और इस जगत में अवतार लिए। आप साक्षात भगवान हैं और सारे जगत को ज्ञान देने में समर्थ हैं। अथ मे देव सम्मोहम अपाक्रष्टुम तुमर्हसि योवग्रहो अहम ममेति इत्यतस्मिन् योजितस्त्वया। अतः हे देव, हे विविध क्रीड़ा परायण अथवा हे परम ज्ञान घन, आप हमारे सम्मोह को दूर कीजिए, हमारे अज्ञान को दूर कीजिए। अज्ञान कैसे दूर किया जाएगा? प्रवचन द्वारा। तो माता देवहूति की प्रार्थना है कि आप हमको कुछ सिखाइए, उपदेश कीजिए, हमारे सम्मोह को, जो सम्यक मोह है, अज्ञान है, भ्रम है, इसको दूर कीजिए। क्या अज्ञान है, कैसा अज्ञान है तुम्हारे मन में? तो कहती यो अवग्रह अहम ममेति, देह आदि में जो मेरी भावना है कि यह मैं हूं, जो अहंता है, और वस्तुओं में, देह के संबंधियों में जो मेरी ममता है, ये मेरे हैं, देह मैं हूं और देह के अनुबंधी लोग मेरे हैं, ये जो ज्योजितस्त्वया आपकी माया के द्वारा जो मेरे भीतर ये अज्ञान आ गया है, ये अवग्रह आग्रह है, दुराग्रह है हमारे मन में कि मैं देह हूं और देह के संबंधी लोग मेरे हैं या पदार्थ मेरे हैं, इस अज्ञान को दूर कर दीजिए। ज्योजितस्त्वया, वास्तव में कोई भी व्यक्ति अज्ञान में है, माया में बंधा हुआ है, तो बांधा कौन है? कौन उसे अज्ञानी बनाया है? भगवान की शक्ति ने अज्ञानी बना दिया है। तो जिसकी शक्ति ने उसको अज्ञानी बनाया, वही व्यक्ति चाहे तो उसका अज्ञान दूर कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। भगवान इतने समर्थ हैं, अगर वे बांध दे तो खोलेगा कौन? अगर वे अज्ञानी बना दिए, नहीं जानने दिए, तो कौन ज्ञान दे सकता है? भगवान की माया नहीं बांध रहा है, दुराग्रह जीवों का उत्पन्न होता है। जैसे जीव सोता है, तो सोता है, सुलाने वाली एक शक्ति होती है, सुला देती है, और जगाने वाली भी शक्ति ही होती है, जगा देती है। देखते हैं, या निद्रा सर्व, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थित, माता दुर्गा जी सभी जीवों को सुला देती है। रात होते ही कितने लोग कहां, कहीं प्लेटफार्म पर, तो कहीं घर में, इधर उधर सो जाते। कुछ लोग तो नहीं चाहते हैं सोना, लेकिन कथा में भी देवी सुला देती है उनको। क्या करें बेचारे, उनका बस नहीं चलता। एक बार एक व्यक्ति सो रहा था कथा में, तो हमने कह दिया कि आप कथा में सोते हैं, तो कहा अरे महाराज वही तो स्थान है जहां कुछ विश्राम मिलता है कथा में, और जगह तो हाय हाय करना है, इसीलिए सो लेते हैं। तो ठीक ही है, विश्राम मिलता है, लेकिन सोना नहीं चाहिए, सुनना चाहिए। बाद में सुनना चाहिए। जीव विवश है, वास्तव में भगवान की बहिरंगा शक्ति ने सबका ज्ञान हरण कर लिया और देह में आत्मबुद्धि भर दिया। यह मेरा है, ये मैं हूं, ये मेरा है, मेरा घर है, मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरा भाई है, मेरा देश, मेरा ये और मैं, ये देह, देह को मैं करता चलना। और इसके साथ देह में मैं बुद्धि, अहंता, और देह के संबंधियों में मम बुद्धि, और इसके बाद तब चालू होता है राग द्वेष, ये सब, ये इस मान्यता पर आधारित सब चलता है। अगर किसी को मेरा मान लिए तो रात दिन उसी के विषय में सोचते रहते, कैसे जिएगा, कैसे खाएगा, क्या होगा, ये होगा, बस यही चीज, ये शरीर मेरा कैसे ठीक रहेगा, शरीर नहीं मैं कैसे ठीक रहूंगा, ऐसा मैं कैसे ठीक रहूंगा, मेरा कैसे चलेगा, क्या होगा, ये होगा, ये होगा। यही माया है, हमेशा इस जड़ शरीर के विषय में सोचना और शरीर के संबंधियों के विषय में सोचना सर्वदा। तो अहम मम इति ए तस्मिन ज्योजितस्त्वया, इस दुराग्रह में जोत दी गई हूं मैं। ये दुराग्रह है, बहुत दूषित आग्रह है कि मैं देह हूं और देह से संबंधी लोग मेरे। कहीं व्यक्ति जाता है तो यही चिंता करता रहता, देह का योगक्षेम, देह कैसे स्वस्थ रहेगा, कहां खाने को मिलेगा, कहां पहनने को मिलेगा, कहां सोने को मिलेगा, और मेरा काम धंधा कैसे होगा, मेरी ये इज्जत है, मेरा ये स्वजन है, ये मेरा स्टाफ है, इस तरह का ज्ञान। इतने ये 10-20 लोग हैं मेरे स्टाफ हैं और बाकी तो सब पराए हैं, उनकी कोई चिंता नहीं होती, देह को मैं मानने के कारण यह बड़ा अज्ञान है। तो माता देवहूति प्रार्थना कर रही कि मेरे इस अज्ञान को दूर कीजिए, मैं अपने स्वरूप को प्राप्त करूं और सुख से रहूं, शांति से रहूं। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं सौभृत्य संसार तरोः कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदान वरिष्ठम। हे प्रभो, आप वास्तविक शरण हैं, आप ही शरण लेने योग्य हैं, और अपने भक्तों के संसार वृक्ष को काटने में आप समर्थ हैं, छेदता हैं, कुल्हाड़ी हैं। संसार का अर्थ होता है जन्म मरण। संस्कृत में संसार का अर्थ ये पहाड़, नदी, सूर्य, पृथ्वी, ये सब नहीं होता है। संसार का अर्थ होता है संसरती इति संसार, संसरती इति संसार, जो हमेशा बदलता जाए, बहता जाए, उसको संसार कहते हैं। हम लोग मां के गर्भ में कुछ दिन रहते हैं और गर्भ से प्रकट होने के बाद बच्चा रहते हैं, रोते रहते हैं, अज्ञान में रहते हैं, कुछ काल के बाद कुमार बनते हैं, फिर पढ़ाई लिखाई करते हैं, फिर और नौकरी चाकरी करके, फिर बुढ़ापा का दुख, और फिर शरीर छोड़ना, मरना, और फिर जन्म। तो जन्म और मृत्यु निरंतर चलते रहते हैं, और जन्म और मृत्यु के बीच में शोक, मोह, भय, भूख, प्यास, जितने दोष हैं, बुढ़ापा है, बीमारियां हैं, इनको संसार कहा जाता है। संसार का ये अर्थ। तो भगवान अपने भक्तों के स्वभृत्य संसार तरह कुठारम, अपने भृत्यों के संसार रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुठार है, बहुत कड़ा कुठार है, वो समाप्त कर देते हैं। भक्त का जन्म मरण नष्ट हो जाता है और जो भी दोष है सब नष्ट हो जाता है। तो प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है, उनका क्या स्वरूप है, इस बात को जानने के लिए मैं आपकी शरण ले रही हूं, क्योंकि आप सब धर्म को जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ। सब धर्म, सब धर्म का अर्थ वैष्णव धर्म, जैव धर्म, जो जीव का वास्तविक कर्तव्य है स्वरूप के अनुसार, उसको सब धर्म कहा गया है। और बाकी दुनिया में जो इस समय देख रहे हैं धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये सब असत धर्म है वास्तव में, ये कोई धर्म नहीं है। वास्तविक धर्म है भगवान को जानना और उनसे प्रेम करना, इसको सब धर्म कहा गया है। ठीक ठीक जीव भगवान को जान जाए और उनसे प्रेम करे और प्रेम करके उनकी सेवा करे, इसको सब धर्म या सनातन धर्म कहा गया, इसको सनातन धर्म कहा। जो जीव से कभी अलग किया नहीं जा सकता है, धर्म का यही अर्थ होता है किसी वस्तु से उसके विशेषत्व को कदापि अलग नहीं किया जा सकता, किसी भी देश में, किसी भी काल में, और किसी भी उपाय से उस वस्तु के स्वभाव को उससे अलग नहीं किया जा सकता है। तो उस वस्तु का जो मूल स्वभाव है, जो उस वस्तु को धारण किया है, उसको उस वस्तु का धर्म कहते हैं। जैसे अग्नि का धर्म, अग्नि का धर्म है दाह उत्पन्न करना, जलाना। अग्नि से दाहिका शक्ति को अलग किया ही नहीं जा सकता है। अगर दाह नहीं है, ज्वलनशीलता नहीं है अग्नि में, तो उसको अग्नि कहा ही नहीं जा सकता। तो अग्नि से दाह शक्ति को, दाहिका शक्ति को अलग नहीं किया जा सकता है। और जैसे चीनी है सुगर, तो सुगर में से मिठास को अलग नहीं किया जा सकता है। और अगर अलग किया गया तो फिर चीनी चीनी नहीं है। इसी तरह से जीव है, जीव का जीवत्व तो क्या है, उसमें सार क्या चीज है। जीव का जीवत्व तो है कृष्ण से प्रेम करना, कृष्ण की भक्ति करना। अगर किसी जीव में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, भगवान का ज्ञान नहीं है, तो मरा हुआ है, वो जीव जीव है ही नहीं। तो जीव का सार है, धर्म है कृष्ण से प्रेम करना, भगवान से प्रेम करना। तो इसी को सब धर्म या सनातन धर्म या वैष्णव धर्म, जैव धर्म कहा जाता है। तो जितने भी इस धर्म को जानने वाले हैं, उनमें भगवान कपिल देव वरिष्ठम श्रेष्ठ है। जमराज जी ने कहा है कि हम लोग 12 व्यक्ति भागवत धर्म को जानते हैं। स्वयंभूर नारद शंभूर कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्म बलिर बया शकीर बयम, उसमें भगवान कपिल देव है, जमराज जी कहते हैं। तो सही सही धर्म को जानने वालों में भगवान कपिल देव श्रेष्ठ है। तो मैं आपकी शरण में हूं और मैं जानना चाहते हूं कि प्रकृति का क्या स्वरूप है और पुरुष का क्या स्वरूप है, अर्थात जड़ पदार्थ का क्या स्वभाव है और जीव का और भगवान का क्या स्वभाव है, ये मैं जानना चाहती हूं। प्रकृते है पुरुषस्य, पुरुषस्य पुरुष का अर्थ होता है भोक्ता, स्वामी। तो इस संसार में चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, स्त्री हो चाहे जेंट्स हो, ये सभी वास्तव में प्रकृति है, कोई पुरुष नहीं है। प्रकृति मतलब भगवान की शक्ति। पुरुष का देह है, शरीर है, लेकिन वास्तव में जीव जो है सब प्रकृति का अंश है, प्रकृति है। तो प्रकृति का स्वभाव होना चाहिए पुरुष को संतुष्ट करना, क्योंकि पुरुष ही भोक्ता है, भगवान वास्तव में भोक्ता है, भोक्तारं जगत तपसा। और बाकी हम सब लोग, देवता या मनुष्य कोई हो, स्त्री चाहे पुरुष हो, ये सब प्रकृति है। भगवान ने गीता में इस बात को कहा है, ये सब मेरी प्रकृति है। जीव को उन्होंने कहा है कि मेरी परा प्रकृति है, और जड़ जगत को भूमि रापनलो वायु खम मनो बुद्धि रे वच, इसको कहा है अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति और चाहे परा प्रकृति जीव स्वरूप, ये दोनों का निर्माण भगवान ने किया है कि ये दोनों मिलकर प्रभु से प्रेम करें, सेवा करें। वास्तविक भोक्ता है भगवान, लेकिन इस जगत में देखा जाता है कि चाहे स्त्री हो या मर्द हो, पुरुष हो, ये सब भोक्ता भगवान की नकल कर रहे हैं, अपने को भोक्ता समझते हैं, समझते हैं कि ये संसार हमारे भोगने के लिए बनाया गया है, भोगने के लिए बनाया गया है। स्त्री हो चाहे पुरुष, कोई स्त्री भी उसी कंपटीशन में है, ये हमको ये भोगना है, हमको ये भोगना है, हमको ये भोगना है। उनको ये पता नहीं है कि जिसने इन वस्तुओं को बनाया है उसका भी कुछ प्लान है ना, उसका कुछ प्लान है, उसके प्लान योजना के अनुसार हमें चलना चाहिए। यदि हमको भोगने से मना किया है तो क्यों भोगें? ये तो ऐसा ज्ञान है जैसा हमने देखा है कई जगह, विशेष करके बनारस सब्जी मंडी में कुछ गाय और सांड घूमते रहते हैं सब्जी मंडी में, और कोई पैसा लेकर के नहीं चलते हैं, और किसी असावधान दुकानदार के ढेरी में कोई न कोई सब्जी में मुंह लगा देते हैं, खाने लगते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब ही खाने चले तब तक दुकानदार कड़ा डंडा मारता है, खा भी नहीं सके और डंडा लग गए। तो वो अज्ञानी जीव अधिकार नहीं देखते, वो जानते हैं कि हमारे खाने के लिए घूमते रहते हैं, और कहीं कहीं खाते हैं और ज्यादातर डंडा खाते हैं। यह जीव की दशा है, बैल गाय जैसा घूम रहा है और ये नहीं पता है कि किसकी चीज है, कैसे खाएं, बस भोगो भोगो, इसी में पड़ा हुआ है। और इस भोगने के कारण ही उसकी दुर्दशा हो रही, भोगने के कारण दुर्दशा हो रही। तो चूंकि जीव प्रकृति है तो पुरुष की नकल न करें, भगवान की नकल न करें। भगवान भोगता है, हम सब लोग उनके सेवक हैं, उनके सुख सुविधा में अपने जीवन को लगा देना, अपने इंद्रियों को लगा देना, इसी में हमारा सुख है। किस प्रकार से हम भोक्ता नहीं है, जैसे इस शरीर के भीतर शरीर के सारे अंग भोक्ता नहीं है। भोक्ता कौन है, इंजॉयर कौन है, पेट है ना, जथेन्द्रियो जथा तरोर मूल निशेष ने ना तृप्यंत तत्स्कंद भुजो पशाखा प्राणोपहारा तो जथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हणम अच्युतेज्य। शरीर के सारे अंग काम करते हैं, हाथ काम करता है, पैर काम करता है, आंख काम करती है, नाक काम करता है या कान काम करता है, लेकिन खाता कौन है? खाता है वह जो कोई काम नहीं करता, बैठा रहता है वो ही खाता है। देखे है ना, तो प्राणोपहारा च जथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हणम अच्युतेज्य। जब प्राण को, पेट को भोजन दिया जाता है तो वह भोजन सब जगह पहुंच जाता है। काम करने का अधिकार सबको है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। मान लीजिए कोई व्यक्ति ड्राइविंग कर रहा है तो ड्राइविंग करने में उसका पैर लगा हुआ है, हाथ लगा हुआ है स्टीयरिंग पकड़ने में, और कान पीछे का भीषण सुनने में लगा है, आंखें आगे का रास्ता देख रही लगा हुआ है। लेकिन जब होटल में जाएगा खाने तो क्या हाथ कहेगा कि मैंने बहुत मेहनत किया है और इसलिए दो चार रोटी हम पर बांधो, कान शब्द सुना है पीछे का तो कान क्या कहेगा कि हमने भी बहुत मेहनत किया इसलिए हमारे भीतर भी एक आध गुलाब जामुन रसगुल्ला डालो। नहीं, तुम भोक्ता हो ही नहीं। और पैर कहे कि हम पर कुछ भात रोटी बांधो, किसी अंग को नहीं दिया जाएगा। प्राणोपहारा च जथेन्द्रियाणा, पेट को उपहार देने पर सभी इंद्रियों में शक्ति देता है, पैर को भी देगा, हाथ को भी देगा, आंख को भी देगा, है ना। तो भोक्ता है पेट, और जैसे वृक्ष के मूल में जल दिया जाता है तो जल सभी शाखा प्रशाखा फूल फल में पहुंच जाता है, तो भोक्ता है भगवान। जब कोई व्यक्ति भगवान को कुछ अर्पण करता है, भगवान की सेवा करता है, तो उससे सारे जगत की सेवा हो जाती है। वो रस, वो फल सब जगह पहुंच जाता है। भगवान का ऐसा स्वभाव है। लेकिन यदि भगवान को नहीं दिया, भगवान को अर्पित नहीं किया, तो उसको भी नहीं मिलेगा जो खाना चाहता है। जैसे मैं उदाहरण दिया कि यदि पेट को अन्न न दिया जाए, हाथ सोचे कि मैं बहुत मेहनत किया हूं तो हाथ में ही भात रखूंगा या रोटी रखूंगा, बांध करके रखूंगा, तो कुछ दिन में सड़ जाएगा, खा के खा सकता है? नहीं खा सकता। अगर हाथ को भी चाहिए कि हमारे भीतर रस आवे, तो यही उपाय है कि पेट में डालो, वहां से इनडायरेक्ट में आएगा, हाथ में रस आएगा, शक्ति आएगी। तो ये भगवान का स्वरूप। इसलिए प्रकृति और पुरुष पर प्रश्न किया जा रहा है। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि हम लोग अपने स्वभाव को नहीं समझेंगे कि हम प्रकृति हैं, हम भगवान के सेवक हैं, हम भगवान के दास हैं, दासी हैं, भगवान को ही प्रसन्न करें, इसके बाद सारा जगत प्रसन्न हो जाएगा। तो आजकल के लोग बहुत अज्ञानी हैं कि वो भगवान की पूजा नहीं करते हैं, भगवान को भोग नहीं लगाते हैं, कहते हैं ये जनता की सेवा करो, ये करो, वो करो, उसकी सेवा कर ही नहीं सकते हैं आप। पहले कोई भी भोजन भगवान को प्रसाद लगा करके, भोग लगा करके तब बांटना चाहिए, तब वो सबको मिलेगा अच्छी तरह से, सबका पाप ताप दूर करेगा, दीर्घ जीवन प्रदान करेगा, स्वास्थ्य प्रदान करेगा। लेकिन भगवान को विसार करके और स्वयं भोगे व्यक्ति या दूसरों को भोगने की सुविधा दे, दोनों को भोग नहीं मिलेगा, दोनों सुखी नहीं होंगे। और इस संसार में दुख का यही सबसे बड़ा कारण है। जिस पुरुष ने, जिस भगवान ने सब कुछ दिया है, उनको विसार करके, भुला करके लोग जीना चाहते हैं, खाते समय भी याद नहीं करते। किसी पशु को यदि भोजन डाला जाए तो पशु विचार नहीं करता है कौन दिया है, क्या दिया है, कैसे खाना, बस खाना जानता। ऐसे ही मूर्ख मनुष्य केवल बस खाना जानते हैं, कहीं होटल में या घर में बस आया सीधे बैल की तरह खाने लगे। अरे पहले भोजन मिले तो उसको भगवान को अर्पण करना, प्रणाम करना, भगवान का नाम लेकर के खाना चाहिए। जो अच्छे लोग होते हैं वास्तव में भोजन सामने आने पर भोजन को प्रणाम करते हैं, भगवान ने दिया है इसलिए भगवान को पहले दे दें, अर्पित करें। ध्यान रखना चाहिए शुद्ध सात्विक आहार के लिए बात कही जा रही है, तो भगवान को पहले अर्पण करें। श्रील प्रभुपाद जी तो यहां तक कहते हैं कि अगर कोई शराब पीने वाला है तो उसको भी चाहिए कि पहले भगवान की याद करे कि हे भगवान आपकी कृपा से मिल रहा है, कम से कम याद तो करे। यदि भगवान न बनावे पानी तो शराब बन ही नहीं सकता है। फल फूल वो दिए हैं, चाहे शराब जिस चीज से बनता है तो सब भगवान ही दिए हैं। तो भगवान की कृपा से जब मिल रहा है तो पीते समय याद करना चाहिए भगवान कि हे भगवान आप दे रहे हैं, नहीं दिए होते तो हमको ये मिलता नहीं। और हम लोग जो पानी पीते हैं, भगवान कहते हैं रसो हम अपसु कौनते, जल में जो तृप्त करने की शक्ति हो मैं हूं, तो हम लोग जो पानी पी रहे हैं वास्तव में भगवान की कृपा से पी रहे हैं, वही पानी बनाए हैं। अगर वे पानी न दें तो हम मर जाएंगे। कोई कहे कि भगवान क्या पानी दिए, हम तो धरती से पानी निकालते हैं, तो धरती में किसका पानी है? किसी परिवार ने भरा है क्या, या किसी सरकार ने भरा है धरती में पानी? धरती में जो पानी है वो भी भगवान का है, समुद्र में जो पानी है वो भी भगवान का है, जो वर्षा होती है वो भी भगवान की ही व्यवस्था है। समुद्र के पानी को वाष्प बना करके और सब जगह मीठा पानी फैला दिया जाता है, वर्षा किया जाता है। वर्षा करना मनुष्य की व्यवस्था नहीं है, है ना? नहीं तो जब जरूरत पड़ती है तो वर्षा कर लेता है, जब जरूरत नहीं पड़ती है तो व्यर्थ क्यों वर्षा होने देता है? कोई अपने हाथ में नहीं है, वास्तव में भगवान का बनाया हुआ है। यह है ज्ञान, देखना किसी वस्तु को भगवान से जोड़ करके, युक्त करके कि भगवान दे रहे हैं, भगवान दे रहे हैं, अग्नि भगवान दिए, आकाश भगवान दिए हैं, वायु का बहना चलना सब भगवान दिए। सिंपल है कृष्ण को समझना वास्तव में, भक्ति योग बहुत सरल है। एक गिलास पानी पीते समय भी व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियस हो सकता है, अगर इतनी बात याद करे कि भगवान ने जल दिया है मुझे तृप्त करने के लिए। इतनी याद बात करके और पानी पीता है तो पानी पीना भक्ति हो जाएगी। और भोजन कर रहा है व्यक्ति, भोजन से पहले अगर वो प्रणाम करे भगवान को, अन्न को प्रणाम करे, तो यह एक खाना भी भक्ति हो जाएगी। तो बहुत सरल है। तो माता देवहूति जो प्रकृति और पुरुष के विषय में प्रश्न कर रही है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवान ने गीता में भी प्रकृति और पुरुष का खूब अच्छा वर्णन किया है, और कपिल देव जी के द्वारा जितने विषयों का वर्णन किया गया है वास्तव में प्रकृति और पुरुष ही उसमें प्रधान है। पुरुष का अर्थ है भगवान, और प्रकृति का अर्थ है भगवान की बहिरंगा प्रकृति या तटस्था प्रकृति। हम सब प्रकृति हैं, हम भोक्ता हो ही नहीं सकते हैं। जैसे पैर हाथ नाक कान भोक्ता हो ही नहीं सकते, भोक्ता है पेट। तो ये सारा जगत भगवान के लिए बनाया गया है, भगवान की वस्तु है, वो स्वामी है। तो किसी वस्तु के उपयोग के पहले सोच लेना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, भगवान को अर्पित करना चाहिए। रामचरितमानस में वाल्मीकि जी ने कहा है, चित्रकूट में भगवान राम ने पूछा कि मैं कहां रहूं, तो वाल्मीकि जी कहते हैं 14 स्थान बताए। पहले तो उन्होंने कहा कि आप बताइए कि आप कहां नहीं रहते हैं, जहां मैं रहने के लिए बताऊंगा आपको, आप तो सब जगह रहते हैं। तो भगवान ने हंस करके कहा, वैसे तो मैं सब जगह रहता हूं, लेकिन अभी समय इस लीला के अनुसार कोई स्थान बताइए, हमें पिता की आज्ञा से 14 वर्ष वन में रहना है। तब उन्होंने बताया चित्रकूट, लेकिन उसके पहले बताते हैं आप कहां कहां रहिए। तो एक स्थान बताते हैं, तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही पूजही तुम ही सहित परिवारा। और क्या कहते हैं, तो जो आपको भोग लगाते हैं भोजन अर्पित करते हैं, और घर में यदि नया वस्त्र आया है अलंकार आया है तो आपको अर्पित करके पहनते हैं, उनके पास रहिए आप, भगवान से कहते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान का प्रसाद खाता है तो भगवान वहां रहते हैं, और जहां भगवान रहते हैं वहीं पर श्री है, विजय है, धर्म है, नीति है, सब। जत्र जोगेश्वर कृष्णो जत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर मम। जहां भगवान है वहीं पर सुख है, सौभाग्य है, नीति है, विजय है। ये संजय जी कह रहे हैं। तो भगवान को अपने पास बसाने का उपाय है कि भगवान को अर्पित करके भोजन किया जाए, और कोई भी अलंकार वस्त्र आदि भगवान को पहले धारण करा लेना चाहिए। एक व्यक्ति पूछा हमसे कि आप कहते हैं कि भगवान को वस्त्र अर्पण करना चाहिए, और मान लीजिए मैं अगर फुल पैंट खरीद करके लाऊंगा तो वो कैसे अर्पित करूं? तो भगवान कृष्ण तो पहनेंगे नहीं फुल पैंट, तो धोती पहनते हैं। मैं कहा नहीं नहीं भगवान पहनेंगे नहीं, प्रसाद बनाकर तुम्हारे पास लौटा देंगे, ठीक है पहनो, बोल दिखा तो दो ना। तो हो सकता है बड़ा भगवान पहन ले, सिंह भगवान पहन ले, बहुत भगवान के ऐसे रूप हैं जो पहन सकते। कोई जरूरी नहीं है कि अब हमारे माप का वस्त्र है तो भगवान उसको धारण कर लें, वास्तव में प्रसाद बना देते हैं, वो देखते हैं कि ये हमको अर्पित किया है, भगवान इतने में खुश हो जाते हैं, ठीक है पहनो कोई बात नहीं। किसी बच्चे को अगर कोई पिता लाता है कुछ पहनने के लिए, तो बच्चा एक बार कह दे कि पिताजी आप पहनिए, जो कि बहुत छोटे साइज का है पैंट या कुर्ता, लेकिन बच्चा अगर कह दे कि पिताजी आप पहनिए, तो पिता ये बात सुन करके खुश हो जाएगा कि बच्चा हमसे प्रेम करता है, हमको मानता है। वो पहनेगा नहीं, बच्चे को ही लौटा देगा। ये कोई मिठाई लाया है बाजार से पिता और बच्चों को खाने के लिए दे, और उसमें से कोई बच्चा अगर कह दे कि पिताजी आप खा लीजिए पहले, आप खाइए, तो पिता खाएगा नहीं, लेकिन बच्चे के इस एटीट्यूड से, इस प्रवृत्ति से खुश हो जाएगा, बहुत प्रसन्न होगा। भगवान यही देखना चाहते हैं, भगवान भूखे नहीं हैं, भूखे हम लोग हैं, कंगाल हम लोग हैं, लेकिन वो देखना चाहते हैं कि बेईमान मेरे तरफ दृष्टि कर रहा है कि नहीं, केवल यही देखना चाहते हैं। और मान लीजिए भगवान भोजन दिए और भगवान पर देखा भी नहीं, कुछ नहीं, बस सीधे हजम करना चालू किया, खाना चालू किया, तो गधा कैसे सुखी हो सकता है? कुछ भी विचार नहीं कर रहा है, कौन अन्न दिया, कौन पानी दिया। इसी के लिए प्रकृति और पुरुष के विवेक की आवश्यकता होती है। व्यक्ति ठीक ठीक अपने स्वभाव को समझ जाए और भगवान के स्वभाव को और दोनों के संबंध को, तो वो सब कुछ कृष्ण को ही अर्पित करेगा और कृष्ण की भक्ति करेगा। इसीलिए यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसका बहुत अधिक वर्णन हुआ है, प्रकृति का और पुरुष का। माता देहूति कहती है कि मैं प्रकृति और पुरुष के स्वभाव को जानना चाहती हूं और इसके लिए मैं आपकी शरण ग्रहण की हूं, मुझे आप सिखाइए। यह जानने के बाद व्यक्ति का अज्ञान बिल्कुल दूर हो जाता है, वो भगवान से चिपक जाता है, प्रेम करता है। यह ऐसा साइंस है। इसीलिए इस प्रसंग में माता देहूति के प्रश्न की बहुत कीमत है। तो आज तो माता देहूति ने प्रश्न किया, कल से भगवान कपिल देव का उत्तर प्रारंभ किया जाएगा। भगवान बहुत सुंदर प्रवचन किए और कई अध्यायों में